आज हम जापान की शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। सामंत पद्धति का अंत, सम्राट मेजी ने किस प्रकार शोगुन सरकार का अंत किया यह आप जानते हैं। अब सम्राट के सम्मुख महत्वपूर्ण कार्य यह था कि देश में एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए और संपूर्ण जापान को अपने आंतरिक मतभेदों को भूलकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन के अधीन लाया जाए। यह बात तभी संभव हो सकती थी जबकि सामंत पद्धति का पूर्ण रूप से अंत हो जाए और सम्राट अपनी संपूर्ण प्रजा पर समान रूप से शासन करे। इसमें संदेह नहीं कि तोकुगावा शोगुनों के शासनकाल में जापान के विविध सामंत राजा शोगुन के वशवर्ती थे, पर जनता पर सामंतों का तब भी अपरिमित अधिकार था और वे अपने अपने प्रदेशों में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र राजाओं के समान सत्ता रखते थे। अब सम्राट मेजी ने यह प्रयत्न किया कि धीरे धीरे जापान से सामंत पद्धति का अंत कर दिया जाए। इसके लिए उसने निम्नलिखित उपायों का आश्रय लिया। 1868 में सम्राट मेजी ने यह व्यवस्था की कि प्रत्येक सामंत की जागीर में एक राज कर्मचारी की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की ओर से भी की जाए करे। जागीरों पर से सामंतों के शासन का अंत नहीं किया गया, पर केंद्रीय सरकार की ओर से एक उच्च राज कर्मचारी की नियुक्ति के कारण सामंत राजाओं और जनता को यह अनुभव होने लगा कि जागीरों में निवास करने वाली प्रजा पर सम्राट का भी प्रत्यक्ष रूप से शासन है। 1869 में कीदो, सागो आदि विविध नेताओं ने अनेक सामंतों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपनी अपनी जागीरों पर उनका जो अधिकार है उसे वे स्वेच्छापूर्वक सम्राट को अर्पण कर दें। सत्सुमा, चोसू, हिजन, तोसा आदि के अनेक सामंतों ने इस समय अपनी जागीरों को स्वमेव सम्राट को लौटा दिया और सम्राट ने बुद्धिमत्ता पूर्वक इन सामंतों को ही अपनी अपनी जागीरों में सूबेदार के पद पर नियत कर दिया। पुराने युग के ये सामंत अब अपनी जागीरों के राजा न रहकर उनके सूबेदार बन गए। कुछ मास पश्चात सम्राट ने एक आज्ञा प्रकाशित की जिसमें अन्य सामंत राजाओं को भी यह आदेश दिया गया कि वे सब भी सत्सुमा आदि के सामंतों का अनुकरण कर अपनी अपनी जागीरों को सम्राट को सौंप दे। इस समय तक जापान में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम का विचार इतना प्रबल हो चुका था और पाश्चात्य लोगों के संपर्क में आने के कारण जापानी लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिए इतने अधिक उत्सुक हो गए थे कि वे किसी सामंत राजा ने सम्राट के आज्ञा के उल्लंघन का साहस नहीं किया और सब ने अपनी नई स्थिति को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। 1871 में सम्राट की आज्ञा द्वारा सामंत पद्धति का बकायदा अंत कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि सामंत लोगों को जन्म भर पेंशन मिलती रहे और उनकी नौकरी में जो समुराई सैनिक थे उन्हें भी राज्य की ओर से वृत्ति दी जाए। सामंतों और समुराई लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था के कारण राजकोष का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया। अतः 1873 में यह आज्ञा जारी की गई कि मासिक पेंशन के स्थान पर एक निश्चित रकम सामंतों और समुराइयों को दे दी जाए। जो सामंत और समुराई लोग सदियों से अपने विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे थे उनकी स्थिति में अकस्मात इस प्रकार का परिवर्तन आ जाना सुगम बात नहीं थी, पर देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही बहुत से सामंतों ने इस समय स्वेच्छापूर्वक अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया था। केंद्रीय सरकार ने भी उन्हें इतनी रकम मुआवजे के तौर पर प्रदान की जिससे कि वे अपने जागीरों को संभालने के झंझट से मुक्त होकर अपना निर्वाह भली भांति कर सकते थे। समुराई लोगों को भी नई स्थिति में विशेष संकट का सामना नहीं करना पड़ा। संपूर्ण जापान के एक केंद्रीय शासन के अधीन हो जाने के कारण उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार उच्च राजकीय पद प्राप्त करने का अवसर मिला। पर यह नहीं समझना चाहिए कि सामंत पद्धति का अंत करते हुए जापानी सरकार को किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ा, पर इसमें संदेह नहीं कि अंत में केंद्रीय सरकार परिस्थिति को संभालने सकने में समर्थ हो गई। नई सेना, सामंत पद्धति का अंत करते ही जापान की सरकार ने नई सेना का संगठन किया। अब तक जापान की सेना का निर्माण समुराई लोगों द्वारा होता था और ये समुराई विविध सामंतों की सेवा में रहकर सैनिक सेवा किया करते थे। सर्वसाधारण जनता को यह अवसर ही नहीं था कि वह सेना में भर्ती हो सके, पर अब सब लोगों को यह अवसर दिया गया कि वे सेना में भर्ती हो सके और अपनी योग्यता के अनुसार सैनिक क्षेत्र में उन्नति कर सके। 1872 में जापान में बाधित सैनिक सेवा की पद्धति को आरंभ किया गया। सब लोगों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि सैनिक शिक्षा प्राप्त करें और एक निश्चित समय तक सैनिक जीवन व्यतीत किया करें। निस्संदेह जापान के जीवन में यह भारी क्रांति थी। अब तक सेना का संचालन सामंत राजाओं द्वारा होता था, पर अब जनता में सब प्रकार की स्थिति के लोगों को यह अवसर मिला कि वे सेना में उच्च पदों को प्राप्त कर सके। नए शासन के सिद्धांत। सम्राट मेजी ने सोगुन सरकार का अंत करके शासन सूत्र को अपने हाथों में लेते हुए 1868 में एक घोषणा प्रकाशित की थी, जिसमें शासन के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। सम्राट ने अपनी प्रजा को यह सूचित किया कि अब जापान में एक विचार सभा की स्थापना की जाएगी और राज्य संबंधी नीति का निर्धारण इस सभा की सम्मति व परामर्श के द्वारा ही हुआ करेगा। विचार सभा में लोकमत पर भी ध्यान दिया जाएगा। न्याय करते हुए सब मनुष्यों के प्रति एक समान बर्ताव होगा और राज्य के शासन में किसी भी देश से बुद्धिमत्ता की बात ली जा सकेगी, उसे ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। निस्संदेह सम्राट मेजी द्वारा आरंभ किए गए शासन के यह आधारभूत सिद्धांत थे और उसने उन्हें बड़ी योग्यता के साथ क्रिया के रूप में परिणित भी किया। शासन सुधार के लिए आंदोलन। इस समय जापान में अनेक ऐसे विचारशील नेता उत्पन्न हुए जिन्होंने देश के शासन में सुधार के लिए आंदोलन का आरंभ किया। इनमें इतागाकी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1874 में उसने एक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना था। कुछ समय बाद 1874 में ही इतागाकी और उसके सहकारियों ने सम्राट की सेवा में एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि 1868 की उद्घोषणा के अनुसार जापान में एक विचार सभा की स्थापना की जाए और यह विचार सभा लोकमत का प्रतिनिधित्व करने वाली हो, पर सरकार के ने अन्य महत्वपूर्ण लोग शासन सुधार के मार्ग पर इतना अधिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। फिर भी इस समय जापान के शासन में कतिपय सुधार किए गए और इनके अनुसार वहां पहली बार एक सीनेट और एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस समय तक अनेक जापानी नागरिक यूरोप की यात्रा कर चुके थे और वहां की राजनीतिक संस्थाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। किस प्रकार विविध जापानी लोग यूरोप में जाने शुरू हुए, इस पर आप जानते हैं। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करके या भ्रमण करके लौटे हुए ये जापानी नागरिक शासन सुधार के प्रबल आंदोलन में तत्पर थे। इनके आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि 1878 में जापान में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात किया गया। जापान के विविध प्रांतीय सूबेदार अपने शासन कार्य में स्थानीय सभाओं से परामर्श किया करें, यह भी व्यवस्था की गई। पर शासन सुधार के लिए जो आंदोलन इस समय जापान में जारी था, वह इन सुधारों से शांत नहीं हुआ। 1874 में इतागाकी द्वारा राजनीतिक प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की गई थी, उसने अपना प्रयास जारी रखा। अब इसी प्रकार की अन्य भी अनेक संस्थाएं स्थापित हुई। धीरे धीरे ये सब संस्थाएं एक संगठन में संगठित हो गईं और एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ, जिसका प्रधान नेता इतागाकी था। इतागाकी के इस राजनीतिक दल को हम लिबरल या उदार दल कह सकते हैं। यह दल जापान में पार्लियामेंट की स्थापना करने के पक्ष में था और पश्चात देशों के अनुकरण में लोक सत्तावाद का विकास करने का समर्थक था। 1881 में काउंट ओकुमा ने एक नए दल का संगठन किया। ओकुमा पहले जापान के अर्थमंत्री के पद पर अधिष्ठित थे, पर सरकार के अन्य सदस्यों से मतभेद होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। वह भी जापान में वैध राजसत्ता स्थापित करने के पक्ष में थे, पर उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह इतागाकी के दल में शामिल होकर कार्य करे। उसने अपने दल का पृथक रूप से संगठन किया। यह दल प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव दल के नाम से प्रसिद्ध है। इस दशा में सम्राट ने भी अनुभव किया कि देश में शासन सुधार करना आवश्यक है। 1881 में उसकी ओर से एक घोषणा प्रकाशित की गई जिसमें यह वादा किया गया कि 1890 तक जापान में पार्लियामेंट की स्थापना कर दी जाएगी। साथ ही जनता से यह भी अनुरोध किया गया कि वो अब राजनीतिक आंदोलनों को बंद कर दे। समाचार पत्रों द्वारा सरकार की आलोचना करने और सुधार के लिए आंदोलन करने को निषिद्ध कर दिया गया और 1883 में सम्राट की ओर से यह आज्ञा प्रकाशित हुई कि विविध राजनीतिक दलों को भंग कर दिया जाए। 1884 में इतागाकी का उदार दल भंग हो गया और लगभग इसी समय में काउंट ओकुमा की प्रोग्रेसिव पार्टी की भी समाप्ति हो गई। नए शासन विधान का निर्माण। शासन सुधार संबंधी राजाज्ञा को क्रिया में परिणित करने के लिए 1882 में श्री इतो को इस उद्देश्य से यूरोप भेजा गया कि वे वहां के विविध देशों की शासन पद्धति का अनुशीलन करें और सरकार को परामर्श दे कि किस प्रकार के शासन सुधार जापान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। श्री इतो जापान के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और शोगुन की सरकार का अंत कर सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित करने में उनका प्रमुख हाथ था। जापान के नए शासन के संबंध में उनके विचार निम्नलिखित थे। नए शासन विधान का निर्माण जनता द्वारा नहीं होना चाहिए, वह सम्राट या सरकार की कृति होनी चाहिए और उसमें सम्राट की स्थिति को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहिए। सामंत पद्धति का अंत करने में जिन जापानी नेताओं का प्रधान कर्तृत्व था उनकी स्थिति एवं शक्ति को भी अक्षुण रखा जाना चाहिए। जनता में प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन स्थापित करने की जो मांग निरंतर बढ़ती जा रही है नए शासन विधान में उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि फ्रांस और अमेरिका के रिपब्लिकन शासन श्री इतो के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते थे और जापान के शासन विधान का निर्माण करते हुए उन्हें आदर्श नहीं बनाया जा सकता था। इंग्लैंड का शासन विधान भी उनके लिए विशेष उपयोगी नहीं था क्योंकि उसमें भी राजा की स्थिति ध्वज मात्र ही थी। यूरोप के विविध प्रदेशों में इतो ने प्रशिया के शासन को इस प्रकार का पाया जिसका जापान में सुगमता से अनुकरण किया जा सकता था। प्रशिया में होहेनसोलर्न राजवंश का शासन था। मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी था और पार्लियामेंट में कुलीन जागीरदारों तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व था। इतो की समाप्ति में इस प्रकार का शासन ही जापान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता था। 1883 ईस्वी में इतो यूरोप की यात्रा समाप्त करके जापान वापस लौट आया। उसी समय सरकार ने एक नया विभाग स्थापित किया जिसे देश के लिए नया शासन विधान तैयार करने का काम सौंपा गया। इस विभाग का अध्यक्ष श्री इतो को ही नियुक्त किया गया। 1889 में सम्राट की ओर से नए शासन विधान की घोषणा की गई, यद्यपि उसके कुछ अंश पहले ही क्रिया के रूप में परिणत कर दिए गए थे। उदाहरण के तौर पर 1885 में जापान में बाकायदा मंत्रिमंडल का संगठन हो गया था और उससे एक साल पहले सन 1884 में प्रशिया के नमूने पर जापान में भी एक नई कुलीन श्रेणी का निर्माण किया गया था जिसमें 5 प्रकार के लॉर्ड रखे गए थे। ये लॉर्ड प्रिंस, मार्क्विंस, काउंट, विस्काउंट और बैरन कहलाते थे। ये 5 प्रकार के लॉर्ड सम्राट की कृति थे और उसी के द्वारा कोई व्यक्ति इन पदों को प्राप्त कर सकता था। कुछ व्यक्तियों को लॉर्ड के ये विविध पद वंशानुगत रूप से दिए जाते थे और कुछ को केवल अपने जीवन काल के लिए ही। 1889 का शासन विधान। सम्राट द्वारा जिस नए शासन विधान की घोषणा की गई उसकी रूपरेखा इस प्रकार है। शासन का अधिपति व मुखिया सम्राट को बनाया गया और उनकी स्थिति पवित्र व अनुलंघनीय रखी गई। विविध राज पदाधिकारियों को नियुक्त करना, उन्हें अपने पदों से बर्खास्त करना, उनके वेतन को निर्धारित करना उसी के हाथों में रखा गया। युद्ध की घोषणा करने और संधि विग्रह के सब अधिकार उसी को दिए गए। विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार भी सम्राट को प्रदान किया गया। इसे फिर से सुनिए, विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार भी सम्राट को प्रदान किया गया। सम्राट को शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसके सदस्यों को सम्राट ही नियुक्त करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पार्लियामेंट के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया गया था और मंत्री तब तक ही अपने पदों पर रह सकते हैं जब तक सम्राट का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे। 1889 के शासन विधान द्वारा जापान में एक पार्लियामेंट की भी स्थापना की गई। इसमें दो सदन होते थे, लॉर्डों की सभा और लोकसभा। लॉर्डों की सभा में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते थे, राजघराने के पुरुष, प्रिंस व मार्क विंसवर्ग के लॉर्ड लोग, काउंट, विस्काउंट और बैरन वर्ग के लॉर्डों के प्रतिनिधि, सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य और सबसे अधिक राजकीय कर देने वाले लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। पहले तीन प्रकार के सदस्य जीवन भर के लिए लॉर्डों की सभा में रहते थे। पिछले दो प्रकार के सदस्यों की सदस्यता का काल 7 साल रखा गया था। इस प्रकार लॉर्डों की सभा के सब सदस्य संपन्न व कुलीन वर्ग के ही होते थे। यद्यपि लोकसभा में सब सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, पर 1889 में वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। वोटर होने के लिए संपत्ति की शर्त रखी गई थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जापान में वोट का अधिकार भी अधिक-अधिक विस्तृत होता गया। यह आवश्यक था कि साल में एक बार पार्लियामेंट का अधिवेशन अवश्य बुलाया जाए। इसके अतिरिक्त पार्लियामेंट के विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते थे। पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना कोई नया कानून स्वीकृत नहीं हो सकता था, ना ही कोई नया टैक्स लगाया जा सकता था। यह भी आवश्यक था कि राजकीय बजट की स्वीकृति पार्लियामेंट से ली जाए, पर यदि कभी पार्लियामेंट नए बजट को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो पिछले साल के बजट के अनुसार आय व व्यय को निश्चित किया जा सकता था। सम्राट को यह अधिकार था कि वह पार्लियामेंट में स्वीकृत हुए किसी भी कानून को वीटो कर सके। पार्लियामेंट के सदस्य मंत्रियों के प्रश्न पूछ सकते थे और उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकते थे, पर मंत्रियों को अपदस्थ करने का अधिकार केवल सम्राट को था। पार्लियामेंट के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और पार्लियामेंट में दिए गए भाषणों के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि 1889 के शासन विधान में पार्लियामेंट को पर्याप्त अधिकार दिए गए थे और समय के साथ साथ वह अपनी शक्ति को भी बढ़ा सकती थी। 1889 के शासन विधान में नागरिकों के अधिकारों का भी विशद रूप से प्रतिपादन किया गया था। कानून के सम्मुख सब जापानी नागरिक एक समान स्थिति रखते थे। राजकीय पद व नौकरी प्राप्त करने का सबको अधिकार दिया गया था। भाषा, लेखन व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने, सभाएं करने, संगठन बनाने और अपने विश्वास व विचार के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने की सबको स्वतंत्रता दी गई थी। राज कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तार कर सकें। यह व्यवस्था भी की गई कि अभियुक्तों पर न्यायालयों में बाकायदा मुकदमा चलाया जाए और न्यायालय से दंड पाए बिना किसी व्यक्ति को जेल में न रखा जा सके। संपत्ति के अधिकार को अनुल्लंघनीय घोषित किया गया था और सब नागरिकों को यह अवसर दिया गया था कि वे सरकार के पास अपनी शिकायतों व आवेदन पत्रों को भेज सके। जापान के शासन विधान के ये नागरिकों के अधिकार ठीक उसी प्रकार के थे जैसा कि इस समय विविध पश्चात देशों के लोकतंत्र शासन विधानों में प्रतिपादित थे। 1889 के शासन विधान द्वारा जापानी सरकार व शासन की दृष्टि से इस युग में पश्चात देशों के समकक्ष हो गया था। इसमें संदेह नहीं कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन लोकतंत्रवाद के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे, पर इसी समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन आदि अनेक राज्यों के शासन लोकतंत्रवाद के दृष्टि से जापान से अधिक उन्नत नहीं थे। रूस, तुर्की आदि की सरकारें तो जापानी सरकार की तुलना में निश्चित रूप से अधिक निरंकुश व स्वेच्छाधारी थी। यूरोप के विविध देशों में सामंत पद्धति और एकतंत्र शासन का अंत होकर लोकतंत्र शासन की स्थापना में एक सदी से भी अधिक समय लगा था, पर जापान इस युग में इतनी शीघ्रता से उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ा रहा था कि उसने चौथाई सदी से भी कम समय में सामंत पद्धति और निरंकुश शासन का अंत कर एक ऐसे शासन विधान की स्थापना कर ली थी जो 19वीं सदी की प्रवृत्तियों के सर्वथा अनुकूल थी। इसके साथ ही पाश्चात्य देशों के साथ की गई संधियों में भी संशोधन कर जापान ने अपनी स्थिति को बहुत ही अधिक मजबूत बनाया। 1858 में अमेरिका से और उसके बाद ब्रिटेन, हॉलैंड आदि अन्य पाश्चात्य देशों के साथ जो संधियां जापान ने की थी उन संधियों में संशोधन किया जा चुका था। ये संधियां जापान की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल थी क्योंकि आयात और निर्यात माल पर जापानी सरकार अपनी इच्छा के अनुसार टैक्स नहीं लगा सकती थी और जापान में निवास करने वाले पाश्चात्य व्यापारी तथा अन्य लोग जापानी कानून एवं जापानी अदालतों के अधीन नहीं थे। साथ ही जापान की मुद्रा पद्धति पर भी इन पाश्चात्य देशों का नियंत्रण था। इस समय जापान में सेना, सोना और चांदी दोनों के सिक्के प्रचलित थे। संधियों द्वारा पाश्चात्य देशों ने सोने और चांदी के इन सिक्कों के मूल्य में 1:4 के अनुपात को स्वीकार किया था, जिससे कि 1 तोला वजन के सोने के सिक्के के बदले में 4 तोले वजन के चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार कह सकते हैं, यदि सोने का मूल्य 100 येन जापान का सिक्का प्रति तोला हो तो चांदी का मूल 25 येन प्रति तोला मिलता था, पर इस समय यूरोप में सोने और चांदी के मूल्य में 1:16 का अनुपात था। पाश्चात्य व्यापारी अपने देशों से चांदी के सिक्के भारी परिमाण में जापान लाते थे। पहले उनका विनिमय जापान के चांदी के सिक्कों से करते और फिर जापानी चांदी के सिक्कों के बदले में 4:1 के अनुपात से जापान के सोने के सिक्कों को प्राप्त करते थे। इस विनिमय में उन्हें 400% का मुनाफा हो जाता था। संधि की शर्तों में इस विनिमय दर का भी उल्लेख था, अतः जापानी सरकार पाश्चात्य व्यापारियों के इस अनुचित व्यापार को नहीं रोक सकती थी। इसका परिणाम यह था कि सोना बहुत बड़ी मात्रा में जापान से यूरोप और अमेरिका पहुंचने लगा था और जापान प्रायः सोने से बिल्कुल खाली होने लग गया। स्वाभाविक रूप से जापानी सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी कि इन संधियों में संशोधन किया जाए। इसलिए जब 1868 में शोगुन शासन का अंत होकर सम्राट को की शक्ति की पुनः स्थापना हुई तो इन संधियों में संशोधन के प्रश्न पर भी ध्यान दिया गया। 1871 ईस्वी में श्री युवा कुरा के नेतृत्व में एक मिशन इस उद्देश्य से यूरोप और अमेरिका भेजा गया कि वह वहां की सरकारों से बातचीत करके इन संधियों में परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। श्री युवा कुरा ने विविध देशों की यात्रा कर उनकी सरकारों के साथ संपर्क स्थापित किया, पर उसे अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं हो सकी। जापान वापस लौटकर श्री युवा कुरा ने अपनी सरकार को सूचना दी कि संधियों में संशोधन तभी संभव होगा जबकि पहले जापान में न्याय व्यवस्था को सुचारू व समुचित रूप से संगठित कर लिया जाए। जापानी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले अपने कानूनों, दंड विधान और न्याय विभाग को इस प्रकार से संशोधित कर ले जिससे कि ये सब आधुनिक युग के विचारों के अनुकूल बन जाए। इसी प्रकार आयात और निर्यात माल पर अपनी इच्छा के अनुसार टैक्स लगा सकने का अधिकार जापानी सरकार को तभी प्राप्त हो सकेगा जबकि विदेशी व्यापारियों को जापान में व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान बहुत उन्नति कर गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वत्र विकास हो रहा है और पाश्चात्य देशों में विदेशी व्यापार को हानिकारक न मानकर देश के लिए हितकर समझा जाता है। श्री युवाकुरा की रिपोर्ट पर जापानी सरकार ने भली भांति विचार किया और कानूनों व न्याय पद्धति में उन सुधारों को आरंभ किया गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी जापान पश्चात देशों के समकक्ष खड़ा हो गया। जापानी सरकार ने अपने देश के दीवानी और फौजदारी कानूनों का नए सिरे से निर्माण किया। इस कार्य में फ्रांस और प्रशिया के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया। न्याय विभाग का भी नए सिरे से संगठन किया गया। विभिन्न स्तर की अदालतों का निर्माण करते हुए फ्रांस की न्याय पद्धति को सम्मुख रखा गया। 1889 तक कानून और न्यायालय संबंधी यह नई व्यवस्था पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई थी और 1890 में सम्राट ने इस पर अपनी अंतिम स्वीकृति भी दे दी थी। 1894 तक ये नए कानून अविकल रूप से संपूर्ण जापान में प्रयुक्त होने लग गए थे। अब पश्चात देशों को यह कहने का कोई अवसर नहीं रहा था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति की इस कारण आवश्यकता है क्योंकि जापान में कानून और न्यायालय आधुनिक युग के मांग के अनुरूप नहीं है। कानून और न्याय के क्षेत्र में सुधारों के साथ जापानी सरकार इस प्रयत्न में भी लगी थी कि पश्चात देशों के साथ हुई संधियों में संशोधन किया जाए। 1882 तक अनेक पश्चात्य देश इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि वे एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति का अंत कर जापानी अदालतों को ही अपने नागरिकों के मुकदमों का फैसला करने दें, पर वे इस बात पर जोर देते थे कि इन जापानी अदालतों में जापानी न्यायाधीशों के साथ साथ पाश्चात्य देशों के न्यायाधीश भी होने चाहिए। उनका कथन था कि केवल उन्हीं जापानी अदालतों में पश्चात लोगों के मुकदमों पर विचार हो जिनमें कम से कम एक पश्चात न्यायाधीश भी हो। जापानी सरकार इस बात को समझौते के तौर पर मानने को तैयार थी क्योंकि उसकी दृष्टि में यह व्यवस्था एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी थी, पर जापान का लोकमत इसके अत्यंत विरुद्ध था। जापानी लोग कहते थे कि विदेशी न्यायाधीशों का जापान की अदालतों में बैठना उनकी राष्ट्रीय गौरव के सर्वथा विपरीत है, जिस कारण यह क्रिया के रूप में परिणित नहीं हो सका। 1888 में काउंट ओकामा ने इस संबंध में संधियों में संशोधन के लिए बातचीत करने के उद्देश्य से पाश्चात्य देशों की यात्रा की। अमेरिका को वह एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की पद्धति का अंत कर देने के लिए तैयार करने में सफल भी हुआ, पर अमेरिका ने यह शर्त लगाई इस बात को तभी क्रिया में परिणित किया जाए जब अन्य देश भी इसी प्रकार के संशोधनों को स्वीकृत करने के लिए तैयार हो जाएं। 1894 तक जापान के नए दीवानी और फौजदारी कानून अविकल रूप से प्रयोग में आने लगे थे और अदालतों का संगठन भी नए ढंग से हो गया था। इस दशा में 1894 में इंग्लैंड ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि 1899 से इंग्लिश नागरिकों के मुकदमे जापानी अदालतों में पेश होने लगे। उसका विचार था कि 5 साल में यह बात भली भांति स्पष्ट हो जाएगी कि जापानी अदालतें भी पश्चात देशों की अदालतों के समान यह न्याय संबंधी नए आदर्शों के अनुसार न्याय क्रिया का संपादन करती है या नहीं। 1894 से 1897 के 3 सालों में अन्य पाश्चात्य देशों ने भी जापान के साथ हुई अपनी संधियों में इंग्लिश संधि के ढंग पर संशोधन किए और इस प्रकार 19वीं सदी के अंत से पूर्व ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी पद्धति का अंत हो गया। इस समय 1858 और उसके बाद की विदेशी संधियों में जो अनेक दोष थे उन सबको दूर किया गया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अपना लेने के कारण जापान इस समय तेजी के साथ राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति कर रहा था। उसके कारण वह पाश्चात्य देशों का पूर्णतः समकक्ष बन गया और यह संभव नहीं रहा कि उसके साथ वैसा व्यवहार किया जा सके जैसा कि चीन आदि अन्य एशियाई देशों के साथ हुआ था। जापान ने राजनीतिक विकास के साथ साथ अपने आप को विश्व के अन्य पश्चात देशों के समकक्ष खड़ा किया, जिस कारण जापान को अपने साम्राज्यवाद की नीति को बढ़ाने का अवसर मिल सका।